તારીખ 25/10/1995 શ્રી સમયસાર કળષ્ટિકા શ્લોક નંબર 268 અને 271 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું ભાવનગરમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 77
શ્રી સમયસાર કળષ્ટિકા કળશ 268 સાધ્ય સાધક અધિકારનો પાંચમો કળશ છે. પહેલે અનુક્રમથી 268 કળશ છે. પરિશિષ્ટમાં આ બધા કળશો છે, એમાંથી કળશ છે 246 કળશ સુધી સમયસારની ટીકા ચાલી. પછી પરિશિષ્ટ જે રચ્યો એમાં પણ કેટલાક શ્લોકોની રચના કરી છે. એમાં આજે નવું વર્ષનું સુપ્રભાત લૌકિક દ્રષ્ટિમાં છે. અધ્યાત્મ દ્રષ્ટિમાં સુપ્રભાત કોને કહેવાય? અધ્યાત્મ દ્રષ્ટિ એવી વાત અહીંયા અમૃતચંદ્રાચાર્ય 269 શ્લોકમાં કહે છે. ચિત્તપિંડ ચંડીમ વિલાસ વિકાસ વિકાસહાસ શુદ્ધ પ્રકાશભર નિર્ભર સુપ્રભાત આનંદ સુસ્થિત સદા અસ્ફલિત એકરૂપ તસ્યેવ ચ અયમ ઉદયથી અચલાર્ચી આત્મા. અર્થ તસ્ય એવ આત્મા ઉદયથી પૂર્વોક્ત જીવને અવશ્ય જીવ પદાર્થ સકળ કર્મનો વિનાશ કરીને પ્રગટ થાય છે, અનંત ચતુષ્ટય રૂપ થાય છે. પૂર્વોક્ત જીવને એટલે સાધક જીવને પૂર્વોક્ત જીવ કો, પૂર્વોક્ત જીવ કો મેને સાધક જીવ કો, અવશ્ય જીવ પદાર્થ સકલ કર્મ કા વિનાશ કરકે પ્રગટ હોતા હૈ. યાને સાધક જીવ કો અપની સાધના જબ આગે બઢતી હૈ ઓર પૂર્ણતા કો પ્રાપ્ત હોતી હૈ તો સકલ કર્મ કા વિનાશ હો જાતા હૈ. જીતને ભી કર્મ થે વો કર્મ કી સ્થિતિ પૂરી હો ગઈ, નયે કર્મ બંધે નહીં, એટલે સકલ કર્મ ક્ષય હોકર કે મોક્ષ કો પ્રાપ્ત હુએ તો ક્યા હુઆ ઉસમે કે અનંત ચતુષ્ટય પ્રગટ હુઆ, અનંત જ્ઞાન, અનંત દર્શન, અનંત સુખ ઓર અનંત પુરુષાર્થ. એસે જીતને ભી અનુજીવી ગુણ થે સબ પૂર્ણ રૂપ સે પ્રકાશિત હુએ, ઉનકા આવરણ સબ આવરણ ક્ષય હો ગયા. ઓર કૈસા પ્રગટ હોતા હૈ? સર્વકાળ એક રૂપ હૈ, કેવળ જ્ઞાન, કેવળ દર્શન, તેજ પુંજ જિસકા એસા હૈ, અચલાર છે. તસ્યેવ ચ અયમ ઉદયતી અચલાર છે આત્મા. અચલાર છે અચલ, જિસકી લો અર્થી મેને તેજ કી લો જ્યોતિ, જો અચલ હૈ. દીવા કી જ્યોતિ તો છોટી મોટી હોતી હૈ, દિયા કી જ્યોતિ હૈ વો તો છોટી મોટી હોતી હૈ, લેકિન યહાં સકલ કર્મ કા ક્ષય હોને સે જો કેવલ જ્ઞાન કી જ્યોતિ પ્રગટ હુઈ વો અચલ રહેગી, ઉસમે કમી કભી આયેગી. સર્વકાળ એક રૂપ હૈ, સાદી અનંતકાલ પર્યંત એક રૂપ મેને વૈસી કે વૈસી પૂર્ણ કેવળ જ્ઞાન કેવળ દર્શન એસા જો આત્મા કા તેજ હૈ, ઉસ તેજ કા પુંજ મેને બહુત તેજ હૈ, અસીમ તેજ હૈ, બેહદ તેજ હૈ વો પ્રગટ હુઈ ऐसा प्रकट हुआ आत्मा, ऐसा आत्मा अपने ज्ञान दर्शन ज्योति को पूर्ण रूप से प्रकट करके प्रकट हुआ। देखो पंचम काल में अमृतचंद्राचार्य मोक्ष की बातें करते हैं। पंचम काल में करते हैं इसका मतलब क्या कि हमारे आगम ऐसा कहते हैं कि पंचम काल में जन्म लेने वाले को यहाँ पर मोक्ष होता नहीं। कि मोक्ष होता नहीं तो फिर इसकी बातें क्यों करते हैं आचार्य से? जो बात अभी संभव नहीं है इसकी चर्चा क्यों करते हैं? कि उनको मोक्ष उतना दूर दिखता नहीं है, मोक्ष समीप में दिखता है इसलिए करते हैं। ये साधक जीव है थोड़े ही काल में मोक्ष पद को प्राप्त करेगा, मोक्ष विशेष दूर नहीं लगता। इसलिए भले ही इस काल में हो नहीं हो, भावना इस सिद्धांत को गिनती नहीं है। भावना का प्राबल्य ऐसा होता है, ये कभी कभी सिद्धांत को या वस्तु स्वरूप को भी गिनती नहीं है। कृपालु देव ने ऐसा ही किया ना, हमको तो इसी भव में पूर्ण होना है, दूसरा भव हमको नहीं करना है। महाविजय क्षेत्र में तो वहां तो पंचम काल ही नहीं है ना, वहां तो एक ही काल है, दूसरा काल वहां, यहाँ छह काल होता है, वहां तो कोई काल ही होता नहीं है, दूसरा काल ही नहीं है वहां तो। लेकिन यहां ये बात चल रही है मोक्ष की, ये मोक्ष अभी हो नहीं हो वो बात हमको स्मरण में रहती
नहीं है।
हमको हमारा मोक्ष केवल ज्ञान आदि पर्याय इतना समीप दिखता है कि हम वो बात को भूल जाते हैं, विस्मरण कर जाते हैं, कभी मोक्ष नहीं होगा वो बात हमको ख्याल में रहती
नहीं है।
सर्वकाल एक रूप है, केवल ज्ञान केवल दर्शन तेज पुंज जिसका ऐसा है, और कैसा है कि चित्त पिंड चंडी में विलास विलास विकास हास। चित्त पिंड मैंने ज्ञान का पुंज का प्रताप की एक रूप परिणति, ऐसा जो प्रकाश स्वरूप उसका निधान है, ऐसा कहकर के ऐसा कहा कि आत्मा में से केवल ज्ञान की पर्याय इतनी अनंत काल तक इतनी पर्याय निकलेगी कि वो निधान उतना का उतना रह जाएगा, अक्षय पात्र है आत्मा, स्वयं अक्षय पात्र है। वो अक्षय पात्र का चमत्कार आता है ना, एक बर्तन बड़ा हो गए उस पर कपड़ा ढांक दे और हाथ अंदर रख के करके उसमें से निकालते ही जाए, जैसे उसमें लड्डू भरा है तो लड्डू देते ही जाए, सबको लड्डू खिलाते जाए, जितना भी आ जाओ खत्म नहीं होता है। वो बात चमत्कार की कहां से निकली कि आत्मा का स्वभाव में से निकली है। आत्म स्वभाव ऐसा है कि आनंद के लड्डू, ज्ञान के लड्डू, ज्ञानानंद के लड्डू निकालते ही जाओ, केवल ज्ञान और परमानंद कितना कम होगा कि एक अंश भी कम होने वाला
नहीं है,
उतना का उतना रह जाएगा भरपूर। पहले वो बर्तन पर कपड़ा नहीं था तो लड्डू चिक्कार भरा हुआ था, बहुत लड्डू बांट दिया और कपड़ा खोला तो वो चिक्कार भरा हुआ ही दिखा, लटे कपड़ा खोला तो पूरा पूरा चरु बर्तन भरा हुआ रहता है। चमत्कार होता है कि नहीं होता है? ये चैतन्य चमत्कार है। आत्मा के स्वभाव और शक्ति में से कुछ भी कम होता
नहीं है।
ऐसा अक्षय पात्र है, वो भाव भाषण में आवे तो उसकी महिमा, उसकी ही महिमा रहा करे, फिर दूसरा किसी पदार्थ की महिमा और जगत के पदार्थ की महिमा थी वो खो गई, खत्म हो गई। स्वरूप की महिमा इतनी आई कि जगत के पदार्थ की महिमा खत्म हो गई। क्या कहते हैं कि ज्ञान का पुंज का जो प्रताप है, ज्ञान का पुंज का जो प्रताप है वो प्रताप कैसा है कि एक रूप परिणति हमेशा रहे, कोई इसमें डेप्रिसिएशन नहीं लगे। शरीर में तो उतना समय होने से डेप्रिसिएशन लगता है, लेकिन आत्मा में कभी होता नहीं है। ऐसा जो प्रकाश स्वरूप है आत्मा, उसका तो निधान भरा हुआ है, निधान भरा हुआ है, मैंने उसमें से कोई कमी होने वाली नहीं है, उतना का उतना वो भरा रहेगा। निधान मैंने भंडार है, लेकिन कैसा भंडार है कि कितना भी निकालो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ऐसा आत्मा निधान है। और कैसा है कि शुद्ध प्रकाश अभर निर्भर सुप्रभात है। तो सुप्रभात शब्द के हिसाब से ये कलश को गुरुदेव भी हर पहले दिन के प्रभात में वो उसका मांगलिक व्याख्यान फरमाते थे। रागादि अशुद्ध प्रकाश, रागादि अशुद्ध परिणति को मिटा करके उत्पन्न हुआ जो शुद्धत्व रूप परिणाम, उसकी वारंवार जो शुद्धत्व परिणति, उससे हुआ है साक्षात उद्योग, जिसमें ऐसा है कि सूर्य का प्रकाश निकला वो बात नहीं है, सूर्य को ग्रहण लगता है, चैतन्य सूर्य को ग्रहण कभी लगता नहीं है। वैसे जो आकाश में सूर्य है, ज्योतिष का विमान है, तेज का पुंज है, बहुत सामने में कोई नहीं देख सके, ऐसा प्रकाश का पुंज है, फिर भी उसको ग्रहण लग जाता है, उसको भी ग्रहण लग जाता है, चैतन्य सूर्य को ग्रहण लगता नहीं है। उसमें कोई राहु केतु नहीं आ सकता, ऐसा तेज का पुंज है। हाँ, मुमुक्षु को सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान होता है, तो ये सम्यक ज्ञान का सुप्रभात होता है। और साधक ज्ञानी को साधना पूर्ण होती है तो केवल ज्ञान का सुप्रभात
होता है।
दो सुप्रभात होता है, एक साधक अवस्था के प्रारंभ में मंगल सुप्रभात होता है, और एक साधक अवस्था के पूर्ण दशा होने से तो केवल ज्ञान का मंगल सुप्रभात होता है। दो समय आता है सुप्रभात का,
दो समय
आता है। ये हर साल आता है वो बात नहीं है, वो तो आता है चला जाता है, आता है चला जाता है, ये तो आता है और कभी जाता नहीं है। सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान हुआ कि कभी जाएगा नहीं, केवल ज्ञान हुआ तो कभी जाएगा नहीं, जाओ। ये सच्चा सुप्रभात है। जो सुप्रभात कभी अस्त होवे ही नहीं, ये तो अस्त हो जाएगा शाम को, अभी 6 बजे साढ़े छः बजे निकला है सूर्य, आज के दिन 6:30 बजे निकला है, शाम को 6:15 बजे अस्त हो जाएगा, 12 घंटा भी रहने वाला नहीं है। जबकि आत्मा को जो सुप्रभात होता है वो कभी अस्त होता नहीं है। इसलिए यहाँ तो यहाँ सुप्रभात के रागादि अशुद्ध परिणति को मिटा करके, ये रागादि अंधकार जिसका नाश हो गया, हाँ सुप्रभात हुआ वो रात्रि मैंने रात्रि व्यतिक्रमी गई सुप्रभात हुआ, भाव निंद्रा टालने का मैंने दर्शन मोह टालने का प्रयास करो वो प्रेरणा दिया है। पुष्पमाला का पहला वचनामृत है, कितना प्रेरणादायक। ये मुमुक्षु दर्शन मोह का अभाव करके सुप्रभात में जग जाओ, आत्म जागृति में आ जाओ, इसलिए हर महीने आत्म जागृति भेजते हैं। देखो वही टाइटल सैंक्शन हुआ दिल्ली से, आत्म जागृति, आज आत्मा की जागृति आ जाओ सब। रागादि अशुद्ध परिणति को मिटा करके जो उत्पन्न हुआ शुद्धत्व रूप परिणाम, वो शुद्धत्व रूप परिणाम की बार बार परिणति हुई, और बार बार परिणति होने से साधक दशा में उसका साक्षात उद्योत हुआ केवल ज्ञान रूप, ये सुप्रभात प्रकट हुआ, केवल ज्ञान रूप पूर्ण सुप्रभात प्रकट हुआ, अभी उसमें कोई फेर पड़ने वाला नहीं है। भावार्थ ऐसा है कि जैसे रात्रि संबंधी अंधकार मिट जाने से दिन का उद्योत रूप प्रकट, उद्योत स्वरूप प्रकट होता है, वैसे मिथ्यात्व राग द्वेष रूप अशुद्ध परिणति को मिटा करके शुद्धत्व परिणाम रूप विराजमान जीव द्रव्य प्रकट होता है। जीव को अनादि से जो मिथ्यात्व राग द्वेष रूप अशुद्ध परिणति का अंधकार था वो मिट गया, और शुद्ध सब गुण शुद्ध परिणाम रूप परिणमन करने लगे, ऐसा शुद्ध परिणाम से जीव विराजमान हो गया, प्रगटपणे विराजमान हुआ। इसलिए उसको सुप्रभात की उपमा देने में आई है। और कैसा है कि आनंद सुस्थित सदा अस्खलित एक रूप द्रव्य के परिणाम रूप अतीन्द्रिय सुख के कारण जो आकुलता से रहितपना, उससे सर्वकाल अमीट अस्खलित अटल है, तदरूप सर्वस्व जिसका ऐसा है वो ज्ञान से फिर आनंद पर आ गए। ज्ञान तो पूरा पूरा प्रकट हुआ, साथ साथ आकुलता से रहित और द्रव्य का परिणाम रूप, मैंने द्रव्य का स्वभाव रूप अतीन्द्रिय सुख का कारण से अभी जिसको मिटने वाला नहीं है, ऐसा अमीट अटल, ऐसा अनंत आनंदमयी अनंत सुखमयी ऐसा जिसका स्वरूप है, ऐसा सुप्रभात प्रकट हुआ कि जिसमें आनंद भी सदाकाल रहेगा, सुख भी सदाकाल रहेगा, और वो जीव का प्रयोजन है। जब जीव को आनंद पूरा मिल जाए, सुख पूरा मिल जाए और ज्ञान की कमी नहीं रहे, वरना तो जिज्ञासा से आकुलता, कुतूहल से भी आकुलता रहे वो भी रहने वाली नहीं है। एक समय में परिपूर्ण लोकालोक का ज्ञान और एक समय में परिपूर्ण पूर्णानंद ऐसा जो प्रकट होता है, ऐसा प्रकट निर्वा ऐसा सुप्रभात केवल ज्ञान और परमानंद प्रकट करने की भावना का ये कलश है। भावना भाते भाते ये पूर्ण हो जाएगा। अच्छा, 268 के बाद 271 कलश मिले। तो 270 कलश के बाद भावना लिया है, न द्रव्येण खंडयामी, न क्षेत्रेण खंडयामी, न कालेन खंडयामी, न भावेन खंडयामी, सुविशुद्ध एको ज्ञान मात्र भावो भाव अस्मी, ये आत्मभावना है। पहले नास्ति करके फिर अस्ति लिया है। मैं द्रव्य से खंडित नहीं होता, मैं क्षेत्र से खंडित नहीं होता, मैं काल से खंडित नहीं होता और मैं भाव से स्वभाव से भी खंडित नहीं होता। आज जीव पदार्थ को उसका चतुष्ट ही है, द्रव्य क्षेत्र काल और भाव उसका चतुष्ट ही है। तो वो समझाने के लिए चार भेद कहे, द्रव्य का भेद, काल का भेद, क्षेत्र का भेद और भाव का भेद। लेकिन चार भेद से भी मैं खंडित नहीं हुआ। चार भेद होते हुए भी एक भेद रूप में खंडित नहीं हुआ। कैसा रहा मैं? शुभ शुद्ध एक ज्ञान मात्र भाव अस्मी। मैं तो एक शुभ शुद्ध ज्ञान मात्र भाव हूं। राजमल जी उसके ऊपर टीका किए, कलश नहीं होने पर भी राजमल जी ने टीका किया है, लेकिन फुटनोट में दिया है कि वो गद्य है, पद्य नहीं है, इसलिए पद्य का नंबर उसको नहीं देने में आया। इसलिए आत्मा वस्तु जो है, अपना स्वरूप है, वो अखंडित है, खंडित नहीं होता, किसी भी भेद से खंडित नहीं होते। जैसे द्रव्य क्षेत्र काल भाव का भेद है, वैसा ज्ञान ज्ञेय ज्ञातापना का भी भेद है। ऐसा भेद से भी मैं खंडित होता नहीं। वो बात 271 कलश में आचार्य श्री कहते हैं, राजमल जी ने उसके ऊपर ये कलश पर बहुत अध्यात्मपूर्ण टीका की है। योयम भावो ज्ञान मात्र मात्र अहमस्मि, ज्ञेयो ज्ञेय ज्ञान मात्र सनैव, ज्ञेयो ज्ञेय ज्ञान कल्लोल वल्गन, ज्ञान ज्ञेय ज्ञातमत वस्तु मात्र। अर्थ, इस कलश का भावार्थ ऐसा है, पहले भावार्थ करते हैं, सार गर्भित बात पहले कर देते हैं। भावार्थ ऐसा है कि ज्ञेय नायक संबंध विषय में बहुत भ्रांति चलती है। जो ज्ञेय नायक संबंध है, आगम में वो बात चली है कि आत्मा नायक है और जगत के अन्य पदार्थ उसके ज्ञेय है, ऐसा आगम में चर्चा चली है। वो आगम की बात यहां अध्यात्म में है
नहीं,
आगम की बात को रखो आगम में, ये जिनागम की बात है। अन्य आगम में तो स्वपर प्रकाशकपणा नहीं है, आत्मा का स्वपर को प्रकाशकपणा
नहीं है।
जैन दर्शन में आत्मा स्वपर प्रकाशक है, ऐसे आगम की चर्चा चली है आगम में। लेकिन कहते हैं कि आगम की चर्चा है जिसमें आत्मा नायक बताया अन्य पदार्थ को विश्व के पदार्थ को नहीं बताया, लेकिन हमारे आत्मानुभव में उसका कोई काम नहीं है। छह द्रव्य ज्ञेय है, वो बात हमारे लिए अप्रयोजनभूत है। क्या है
अप्रयोजनभूत?
वो बात हमारे लिए अप्रयोजनभूत, हमको इसकी चर्चा से कोई फायदा नहीं। केवल ज्ञान में छेद छह द्रव्य ज्ञेय होता है, वो बात हमारे प्रयोजन की नहीं है। हमारे लिए अगर कोई ज्ञेय ज्ञायक की चर्चा करते तो कर्म करनी हो तो आत्मा ही हमारा ज्ञायक है और आत्मा ही हमारा ज्ञेय है, और कुछ हमारे लिए दूसरे से लेना देना है ही नहीं। जाओ, ऐसी अध्यात्म की बात यहाँ पर राजमल जी ने किया है। भावार्थ ऐसा है कि ज्ञेय ज्ञायक संबंध विषय में बहुत भ्रांति चलती है। किस प्रकार की भ्रांति चलती है? कि इससे कोई ऐसा समझेगा कि जीव वस्तु ज्ञायक है, और पुद्गल से लेकर के भिन्न रूप जो छह द्रव्य है वो उसका ज्ञेय है, परंतु ऐसा तो
नहीं है।
अनुभव काल में ऐसी कोई बात है
नहीं।
एकाकार जो अंतर्मुख अनुभव है उसमें आत्मा है, लेकिन छद्रव्य इसका ज्ञेय रहता नहीं है। दूसरी बात वो है, अध्यात्म की जो खास बात है इस कलश में, वो है कि आत्मा को ज्ञायक पना प्रसिद्ध है। आत्मा जानता है इसलिए ज्ञायक पना प्रसिद्ध है, और ज्ञान जो नाम है, ज्ञायक पना ऐसा जो आत्मा का नाम है कि आत्मा ज्ञायक है, वो ज्ञान ऐसा नाम ज्ञेय परक है। क्या नाम है?
ज्ञेय परक।
वो नाम ही ज्ञेय परक है। ज्ञेय को जाने सो ज्ञान, नेयम ज्ञातुम योग्यम ज्ञानम, ज्ञान की परिभाषा है तो लिया है दीपचंद जी ने अनुभव प्रकाश में, ज्ञान के प्रकरण में वो बात लिया है कि नेयम ज्ञातुम योग्यम ज्ञानम। ज्ञेय को जानने का जो योग्य होता है, जिसमें क्षमता होती है, योग्यता होती है, ज्ञेय को जानने की योग्यता होती है, उसको ज्ञान कहने में आता है। ज्ञान किसको कहे? कि जो ज्ञेय को जानने को समर्थ होता है उसको ज्ञान कहते हैं। तो आत्मा का ज्ञायकपणा ऐसा नाम भी ज्ञेय परक है। तो यहां कहते हैं कि वो ज्ञेय छह द्रव्य मत लो। राजमल जी क्या कहते हैं कि इस ज्ञेयों में छह द्रव्य को मत लो। क्यों? क्योंकि तुम्हारी अनादि से वो परज्ञेय पर तो दृष्टि है ही। अब परज्ञेय पर जो दृष्टि है, वो परज्ञेय पर दृष्टि को दृढ़ करनी है या छोड़नी है? रखने से तो कोई लाभ
नहीं है।
परज्ञेय पर दृष्टि रखने से तो अनंत काल से तुम परिभ्रमण कर रहा हो। अभी जन्म मरण मिटाना हो, परिभ्रमण मिटाना हो, तो स्वज्ञेय पर आ जाओ। ये स्वज्ञेय पर आने के लिए वो बात किया है, हेतु है इसके पीछे। ऐसा नहीं है स्वपर प्रकाशक स्वभाव है उसका निषेध करने के लिए वो बात किया है, वो नहीं है। वरना आगम अध्यात्म का विरोध हो जाएगा। लेकिन जो भी ज्ञानी बात करते हैं वो आगम अध्यात्म के अविरोध रूप बात करते हैं। तो यहाँ हेतु अलग है कि स्वपर प्रकाशकपणा लेने से निर्ज्ञायक संबंध जो परद्रव्य का अनादि अनंत है वो पारिणामिक भाव से है। डबल में वो बात किया है, ज्ञेय-ज्ञायक संबंध भी पारिणामिक भाव से है। लेकिन यहाँ हमारे इसका कोई प्रयोजन नहीं है, वो बात का हमको कोई प्रयोजन नहीं है, अध्यात्म में इसका कोई प्रयोजन नहीं है, वो आगम की बात आगम में रहने दो, यहाँ इसका कोई काम नहीं है, जाओ। तो कहते हैं कि अगर कोई इस बात की पकड़ करता है कि नहीं मैं ज्ञाता मैं ज्ञान और सदृव मेरा ज्ञेय, तो ये तो भ्रांति हो गई तुम्हारी, भ्रांति हो गई, मैंने अज्ञान हो गया। परद्रव जानने से तुम्हारा ज्ञेय नायक का पकड़ रहता है तो ये भ्रांति हो गई, होगी ये अज्ञान है, ऐसा है ही नहीं। चलो क्या कहते हैं, ऐसा है ही नहीं अध्यात्म में, तो ऐसा है ही नहीं, तो फिर कैसा है अध्यात्म में? जब ऐसा नहीं है तो फिर अध्यात्म में बात कौन सी है, कैसी बात है? परंतु ऐसा तो नहीं जैसा अभी कहने में आता है वैसा है, अभी कहने में आएगा कैसा है कि अहम अयम यह ज्ञान मात्र भावस्मि, कि मैं ही जो कोई चेतना सर्वस्व ऐसी वस्तु स्वरूप हूं, मैं ही ज्ञान मात्र वस्तु हूं, मैंने चेतना सर्वस्व भी वस्तु स्वरूप हूं, मैं ऐसा है कि मैं ज्ञायक और समस्त सदृव मेरा ज्ञेय, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि मेरे पर तरफ का वरण वाला ज्ञान वो मेरा ज्ञान और मेरा स्वरूप है ही नहीं। पर मैं एकत्व करे ऐसा ज्ञेय नायक शंकर दोष वो तो मेरा स्वरूप में है ही नहीं, ऐसा तो मेरा स्वरूप है नहीं, परंतु ज्ञेय सन्मुख ज्ञान होवे ऐसा भी मेरा स्वरूप नहीं है। छह द्रव्य केवल ज्ञान में ज्ञेय होता है तो भी वो केवल ज्ञान ज्ञेय सन्मुख नहीं होता है, अपने वो स्तुति है ना हमारा कि विश्वनी पण सिद्धि है, हूँ ज्ञान छू हूँ ज्ञेय छू हूँ ज्ञाता एम लीधु से ने छो आत्मज्ञान ही बस ज्ञान है, आत्मज्ञान बस ज्ञेय है, अने हूँ पोते ज ज्ञाता छू, अने विश्वना पदार्थनी पण एमां सिद्धि है, पण कई रीते स्वरूप सन्मुख रहीने, विश्व के छह पदार्थ के सन्मुख होकर के उसको जाने, वो ज्ञान का स्वरूप नहीं है। हाँ आत्मज्ञान में भी विश्व की प्रसिद्धि है लेकिन विश्व के सन्मुख होकर के नहीं, जो शुद्ध स्वपर प्रकाशकपणा है वो स्वसन्मुखता में उत्पन्न होता है, पर सन्मुखता होवे तो पर प्रकाशकपणा है ऐसा वस्तु का स्वरूप नहीं है। ये बात समझने के लिए ये कलश है, ये टीका है, इसमें निषेध किसका है? पर सन्मुखता का निषेध है, निर्णायक शंकर दोष का निषेध है, पर सत्ता अवलंबन करने का ज्ञान का जो प्रकार उल्टा है दोषित है उसका निषेध है। ज्ञेय नो निषेध नहीं, ज्ञान नो निषेध नहीं, पर ज्ञान ना दोष नो निषेध है। ज्ञान में दो प्रकार के दोष होते हैं, एक ज्ञेय एक शंकर दोष होता है, वो आचार्य श्री ने 31वीं गाथा में उसका निषेध किया, तीर्थंकर भगवान की स्तुति कैसे होना ज्ञेयनायक शंकर दोष का नाश करके। और परसत्ता अवलंबन शिल्पणा जो है क्या होता है, ज्ञेयनायक शंकर दोष नाश होकर के ज्ञान दशा प्रकट होती है, वो तो चतुर्थ गुण स्थान में हो ही जाता है। पहले गुण स्थान में ज्ञेयनायक शंकर दोष मैंने ज्ञेय को जानते हुए एकत्व कर लेता है जीव, क्योंकि निस्वरूप का अवलंबन उसको हाथ में आया नहीं है। जब आत्मज्ञान हुआ और स्वसत्ता का अवलंबन लेने लगा ज्ञान, तब भी आंशिक रूप से उपयोग बाहर जाता है, ज्ञान का एक अंश बाहर जाता है, अन्य सत्ता का अवलंबन लेता है। जैसे ग्रंथ पढ़ता है, साधक भी ग्रंथ पढ़ते हैं तो ग्रंथ का अवलंबन उपयोग को होता है कि नहीं होता है, उसका निषेध है क्या? उसका भी निषेध है। तुम अंतर्मुख होकर के स्वसत्ता में रह जाओ, स्वसत्ता के अवलंबन में पूर्ण रूप से, उपयोग को बाहर निकालना वही उपयोग में दूषित बना है, ये ज्ञान का दोष है। उपयोग बाहर निकला के जम का दूत समझो, सुगानी जी ने वो बात किया, थोड़ा पावरफुल बात करते थे कि उपयोग बाहर निकला तो मैं, मुझे तो मौत दिखती है, मेरा उपयोग बाहर जाता है क्यों, बाहर निकलता है क्यों, अंदर में क्यों नहीं रह जाता, मेरा आनंदमय स्वरूप से कौन अधिक है, बाहर में तो कोई आनंद है ही नहीं, कहीं भी मेरा सुख नहीं है, आनंद नहीं है, फिर क्यों जाता है? तो उसका निषेध कर दिया कि आत्मा ज्ञान और परग्ने उसका ज्ञे, वो बात इधर है
नहीं, नहीं।
प्रश्न क्या है कि ज्ञानी का उपयोग अंदर भी है, कुछ कुछ ज्ञान का अंश अंदर भी है और कुछ बाहर है, फिर उसमें मेल कैसे बैठता है, कोऑर्डिनेशन मैंने मेल कैसे बैठता है, एक बात। और दूसरा प्रश्न वो है कि वो कैसे अंतर्मुख फिर होता है, ज्ञानी उपयोग को अंतर्मुख कैसे ले जाता है, ऐसा दो प्रश्न है। प्रश्न सूक्ष्म है इसलिए थोड़ा दोहराता हूं मैं, तो उसका समाधान वो है कि उपयोग का जो अंश बाहर ज्ञान का गया ज्ञानी का, उसको उसका ज्ञानी को निषेध आता है, उसी को उसका तो ये कलश है कि उसका तो ज्ञानी को निषेध आता है कि जो उपयोग बाहर निकले वो मेरा स्वरूप नहीं है। इंद्रिय द्वारा वो उपयोग बाहर जाता है तो कहते कि वो मेरा स्वरूप ही नहीं है, ऐसा मेरा स्वरूप है ही नहीं, उसका जोर से निषेध करते हैं। हाँ, आकुलता पैदा करता है, शांत स्वरूप में खलबली मचाता है, इसलिए उसका निषेध करने में आया है।
उपयोग में तो एक फिर भी
एकत्व तो उपयोग भी नहीं करता है, उतना सुमेल है कि जैसे स्वरूप में जो अंतर परिणति है ज्ञान की, वो तो पर पदार्थ के साथ संपर्क नहीं करती है, लेकिन जो उपयोग पर पदार्थ के साथ संपर्क करता है वो भी एकत्व तो नहीं करता है, लेकिन वो उतना भी गया क्यों नहीं जाना चाहिए। पर पदार्थ में तुम्हें क्या लेना देना है, तुम्हारा कोई संबंध तो है ही नहीं, तो कोई कहेगा कि ज्ञेयनायक संबंध तो है नहीं, तो उसका जोर से निषेध करते हैं यार कि ज्ञेयनायक संबंध तो है नहीं, ज्ञेयनायक संबंध तो है नहीं, ज्ञेयनायक संबंध तो है नहीं, ऐसा वजन दे करके तुमको क्या लाभ लेना है वो बताओ ना। हाँ, तुमको तो ज्ञेय सम्मुख होकर के नुकसान होता है, तो इस संबंध पर चौकड़ी लगाओ ना तुम, ये संबंध तुम्हारे काम का नहीं है।
पहले कलश में जो बात की उसी का हाँ
वो तो क्रम में विषय तो ही चल रहा है, फिर साध्य साधक अधिकार है ना। अच्छा पहला कलश में लिया, पहले कलश में एक अध्यात्म पूर्ण बात किया है, अच्छा बात किया है। दूसरा पेज है, पेज दूसरा है और पहला कलश के अंतिम भाग में लिखते हैं कि वहां हितकारी सुख जानना, अहितकारी को दुख जानना। कारण कि अजीव पदार्थ को मैंने, अजीव मैंने पांच अजीव है ना, पुद्गल धर्म अधर्म आकाश और काल, ऐसे पांच अजीव पदार्थ को और छठा संसारी जीव को सुख नहीं है। अजीव को भी सुख नहीं है क्योंकि यहां सुख सुख का गुण नहीं है, अजीव को भी सुख नहीं है और संसारी जीव को भी सुख नहीं है। सिद्ध परमात्मा को तो सुख है लेकिन संसारी जीव को सुख नहीं है, और सुख नहीं है और ज्ञान भी नहीं है। अजीव को भी ज्ञान नहीं है और संसारी को भी ज्ञान नहीं है, और उसके स्वरूप को जानते हुए जानने वाले जीव को भी सुख नहीं है और ज्ञान नहीं है। ये जो छह ने लिया जगत में संसारी जीव और पांच अजीव, उनको जानने वाले जानते हुए जानने वाले को सुख भी नहीं और जानने वाले को ज्ञान भी नहीं। सुख तो नहीं क्योंकि आकुलता होती है प्रसन्न मुक्ता में, लेकिन ज्ञान तो होता है छह द्रव का, तो कहीं नहीं उसको ज्ञान भी नहीं है। ज्ञान किसको कहे तो जो आत्मा को जाने उसका नाम ज्ञान, जो आत्मा को नहीं जाने और छह द्रव का ज्ञान करे उसका नाम ज्ञान है ही नहीं। और अध्यात्म बहुत अध्यात्म है, एक ग्रंथ जो बनाया है राजमल जी ने एकदम अध्यात्म पूर्ण टीका किया है। सर्व भावांतर छिदे माथे की निकाला वो, नमस्समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्व भावांतर छिदे। क्योंकि सर्व भाव अतीत अनागत वर्तमान के सर्व द्रव्य के सर्व भाव प्रत्यक्ष रूप से जानने वाला जो आत्म स्वभाव है उसको मैं नमस्कार करता हूं। तो यहां से कहा निकाला, सर्व भाव को जानने वाले में से निकाला कि परसन्मुख होकर जानता है वो जानने वाले को ज्ञान भी नहीं और जानने वाले को सुख भी नहीं, इसलिए उनको सारपना नहीं घटता। समय सार शुद्ध जीव जो है उसको सुख भी है और ज्ञान भी है, और उसको अंतर्मुख होकर के जानते मैंने अनुभवते, जिसको क्या लिखा जानते माने अनुभवते हुए जाननहार को सुख भी है और ज्ञान भी है, इसलिए शुद्ध जीव को सारपना घटता है। ऐसा अध्यात्म शास्त्र में अंतर्मुख उपयोग की अनुमोदना है, बहिर्मुख उपयोग की कहीं भी अनुमोदना नहीं है। चाहे बहिर्मुख उपयोग देवगुरु शास्त्र के प्रति जाओ, इसकी अनुमोदना न शास्त्रकार करेंगे न ज्ञानी भी करेंगे। अष्ट पावड़ में तो कुंदकुंद आचार्य देव को बहुत जोर से निषेध करते हैं, पर दब्बाओ दुग गई जो भी परद्रव्य के प्रति परिणाम जाता है वो दुर्गति के कारण होता है। ठीक, परद्रव्य में तो देव गुरु शास्त्र सत्पुरुष सब आता है, इसका क्या करोगे? तो वहां परिणाम जाता है, शुभ बंद करता है, शुभ बंद करता है तो देवादि गति होती है, वो तो चार गति होती है, सब चारों चार गति दुर्गति है। जाओ, अच्छा वो अलग बात है, आगम की दृष्टि से परद्रव्य है, अध्यात्म में वो परद्रव्य नहीं है, वो भी अलग बात है। यहाँ वो बात नहीं है, यहाँ तो अध्यात्म में भी एक उच्च कोटि का जो अध्यात्म है, क्या उच्च कोटि का टॉप लेवल का जो अध्यात्म है जिसमें कोई गुण का, कोई परिणाम का, कोई भी अंश स्वरूप को छोड़े, वो बात मंजूर करने में नहीं आती। ऐसी बात होती है, ऐसा कहते हैं गुरुदेव, वो प्रवचन करते थे, पर दबा वो दुग गई उसके ऊपर प्रवचन करते थे, तो ऐसा कहते थे। खुद ही तो सत्पुरुष है ना, और सर्वज्ञ है तो खुद सर्वज्ञ ऐसा ही कहेगा। कोई सर्वज्ञ, कोई ज्ञानी, कोई गुरु, कोई आचार्य ऐसा नहीं कहेगा कि तुम मेरी सेवा करो, तुम अपने परिणाम मेरे में लगाओ, ऐसा नहीं कहेगा। तुम अपना परिणाम अपने स्वरूप में लगाओ, ऐसा कहेगा। ध्वनि में आया वो सुगानी जी तो जरा जोर से कहते थे ना कि पहले तो संसार के पदार्थ के प्रति था, तो वहां से छुड़ाने के लिए बोला कि तुम देव गुरु शास्त्र के प्रति आओ, भक्ति करो, हाँ संसार भक्ति छोड़ो और देव गुरु शास्त्र की भक्ति करो, वरना संसार भक्ति तुम्हारी छूटेगी नहीं। संसार भक्ति को छुड़ाने के लिए देव गुरु शास्त्र की भक्ति आवश्यक है, लेकिन वो व्यवहार भक्ति है। जब देव गुरु शास्त्र की भक्ति करने लगा तो देव गुरु शास्त्र ने एक चाटा लगाया, थप्पड़ लगा दी कि तेरा मुख तेरे सन्मुख कर, मेरे सन्मुख मत रख, तेरे परिणाम के मुख को अंतर्मुख कर ले, बाहरी मत निकल, देख हमारा स्वरूप ऐसा है, हम अंतर्मुख बैठ गए हैं, हम तुम्हारे सामने नहीं देखता है, तुम भी हमारे सामने मत देखो। तो वहां गया तो वहां थप्पड़ लग गई, तो जिसको थप्पड़ लगी अंतर्मुख हो गया, थप्पड़ लगनी चाहिए। अध्यात्म के बहुत से लेवल की बात आती है, एक लेवल की बात नहीं आती है अध्यात्म में, बहुत सी लेवल की बात आती है। हाँ, तो प्रश्न में वो है कि मेल कैसा है, बहिर्मुख अंश और अंतर्मुख अंश में कोऑर्डिनेशन क्या है, कि बहिर्मुख अंश भी एकत्व को तो नहीं साधता है और फिर भी उसका बहिर्मुखपणा का ज्ञानी को निषेध वर्तता है, वो इसका कोऑर्डिनेशन है नंबर एक। और फिर वो उसको अंतर्मुख कैसे करता है, क्यों निषेध करता है तो अंतर्मुख होता है, अगर निषेध नहीं करता है तो अनुमोदन आ जाता है। तो अपने स्वरूप में, स्वरूप का लक्ष्य में वो अपने आत्मभाव का, आत्मभावना से आविर्भाव करते करते, यानी स्वरूप को प्रत्यक्ष कर करके स्वसंवेदन को बढ़ाता है। जो अपनी परिणति में स्वसंवेदन प्रत्यक्ष रूप से चालू है और अपने लक्ष्य में भी आत्मस्वरूप सहज प्रत्यक्ष है, उसको प्रत्यक्ष कर करके स्वसंवेदन को बढ़ाता है और स्वसंवेदन बढ़ता है तो अंतर्मुख हो जाता है। मैं ये पुरुषार्थ ही काम करता है, कौन सा गुण क्या है? उसमें आत्मा का कौन सा गुण काम करता है, कि वीर्य गुण काम करता है, पुरुषार्थ काम करता है और श्रद्धा का बल मिलता है, श्रद्धा का बल, श्रद्धा का पुट लगता है बार बार, जो आत्मश्रद्धा प्रकट हुई साधक को उसका पुट लगता है बार बार। जैसे औषधि को पुट लगाने से औषधि की ताकत बढ़ती है, बढ़ती है कि नहीं
बढ़ती है,
ऐसे श्रद्धा का पुट प्रति समय परिणमन में लगता है कि मैं ये हूं, मैं ये हूं, ये हूं, ये हूं, ये हूं। तो ज्ञान में प्रत्यक्षता आती है तो पुरुषार्थ उछलता है जोर से, जितना तीव्रता से परिणमन आता है उतना मोक्ष समीप आता है। एक समझने की बात है, मुमुक्षु को ये बात समझने की है, वरना इसके पीछे लग जाएगा तो भूल जाएगा कि अंतर्मुख होना है, वो बात ही भूल जाएगा। तो उनको समझना तो चाहिए, भले बाद में ये होता है लेकिन नक्शा तो पूरा पहले समझना चाहिए, नक्शा तो पूरा समझना चाहिए, फिर बाद में होगा। वर्तमान में तो संसार भक्ति छूट करके देवगुरु शास्त्र सत्पुरुष की भक्ति होगी और देवगुरु शास्त्र ऐसा कहेगा कि देखो भैया, हमको तो कोई अपेक्षा नहीं है, हम भी हमारे स्वरूप में लीन है, तुम भी अगर हमारा जैसा होना चाहो तो अपने स्वरूप में लीन हो ना। बस चतुर्थ गुण स्थान से फेरफार होने लगता है, फेरफार होने लगता है। बुद्धिपूर्वक का राग जो छठे गुण स्थान है वहां तक गुरु देव गुरु शास्त्र के पूजा भक्ति आदि के परिणाम रहते हैं, सातवें गुण स्थान से किसी को रहते हैं नहीं, क्योंकि सातवें गुण स्थान में उपयोग अंतर्मुख हो जाता है, आठवें में भी अंतर्मुख है, नौवें में भी अंतर्मुख है, दसवें भी अंतर्मुख है, बारहवें में भी अंतर्मुख है और तेरहवें में से तो फिर बाहर निकलने वाला है भी नहीं। तो ये सब अंतर्मुख उपयोग के गुण स्थान है, सातवें से लेकर एक चार पांच छह उसमें आंशिक उपयोग बाहर जाता है तो उपयोग का विषय देव गुरु शास्त्र रहता है मुख्य रूप से, संसार भक्ति उसकी एकदम कम हो जाती है। वो दो बात साथ में रहेगी, जितना अध्यात्म का जोर आएगा उतनी भक्ति भी जोर से आएगी। नियम सार देखो, द्रव दृष्टि प्रकाश देखो, जितना जोर से अध्यात्म आएगा तो जो अंश बाकी रहा उसमें भक्ति भी जोर से आएगी। तो अगर ऐसा नहीं हो तो फिर शुष्कता आ जाती है, तो बाह्य अंश में ऐसा ही रहेगा, इसका नियम है। और अंतर्मुख सातवें गुण स्थान से श्रेणी लगा दी, आठ नौ दस बार हो गया तो फिर बाहर निकलने वाला नहीं, फिर भक्ति आदि के परिणाम नहीं रहे, वो बात खत्म हो गई। यहां कहते हैं कि अहमयम यह ज्ञान मात्र भाव, उसमें मैं तो ज्ञान मात्र भाव हूं, ये ज्ञान मात्र मैंने चेतना सर्वस्व ऐसी आत्म वस्तु स्वरूप हूं। ज्ञान मात्र कहता पर्याय भी नहीं, ज्ञान मात्र कहता गुण भी नहीं, ज्ञान मात्र कहता द्रव्य का भेद भी
नहीं,
उसको ज्ञान मात्र कहने में आता है, जिसको अनुभय स्वरूप कहते हैं। ऐसा मैं चेतना सर्वस्व चित स्वभाव चित स्वरूप ऐसा ज्ञान मात्र हूं। ज्ञान मात्र मैंने कोई ज्ञान की पर्याय
नहीं,
ज्ञान मात्र कहते ज्ञान गुण भी नहीं, एक गुण भी नहीं, और ज्ञान मात्र कहते हैं द्रव्य का भेद भी नहीं, क्योंकि द्रव्य में भेद का तो निषेध आगे कह दिया 270 के बाद भेद का निषेध तो करते आए हैं। तो द्रव्य गुण पर्याय का भेद भी मेरा स्वरूप नहीं है, तो फिर मैं हूं कैसा कि ज्ञान मात्र। ज्ञान मात्र कहता अनुभव स्वरूप हूं, न त्रिकाली हूं केवल, न केवल अनित्य क्षणिक भी हूं, मैं तो अनुभव स्वरूप हूं, नित्य भी नहीं अनित्य भी नहीं, भेद रूप भी नहीं अभेद रूप भी नहीं, शुद्ध रूप भी नहीं अशुद्ध रूप भी नहीं। 26 कलश लिए कि नहीं लिए 142 कलश के बाद ऐसा ले लेना, उसी को ज्ञान मात्र कहने में आया है। वो द्रव्य गुण पर्याय का भेद तो वस्तु के बंधारणीय स्वरूप को कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन समझने के लिए है, अनुभव के लिए वो भेद कोई काम के नहीं है। उसका तो निषेध चलता है यहाँ कि द्रव्य क्षेत्र काल भाव का तो भेद नहीं, लेकिन ज्ञान ने ज्ञाता का भी भेद मेरे में नहीं है। फिर पर द्रव्य को जानता हूं वो बात तो बहुत दूर है, ये तो ज्यादा दूर है, लेकिन मैं मुझे जानता हूं इसलिए मैं ज्ञाता और मेरा ज्ञेय मैं, उसका भी इधर काम नहीं है। और जब ऐसा होता है तभी उपयोग अंतर्मुख निर्विकल्प होता है। जहां तक भेद भी अंदर में चलता है तो विकल्प चलता है, अंतर्मुखता होती
नहीं है।
ये अंतर्मुख होने के लिए, अंतर्मुख कराने के लिए श्री गुरु का उपदेश है, और ये बढ़िया से बढ़िया उपदेश है। ऐसी बात
जय परम कृपाल श्री कांत रुदे मित्र।